स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 16 नवंबर और दिन बुधवार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा आज से। सरकार का दावा, विपक्ष के हमलों के लिए है तैयार।
शीतकालीन सत्र को सार्थक बनाएंगे, जो विपक्ष और बाकी पक्ष जो मुद्दे लाएंगे सब मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है।
क्या नोटबंदी के फैसले के बारे में कुछ लोगों को पहले से थी जानकारी, करेंगे एक विश्लेषण। ओबामा ने अति राष्ट्रवाद के खतरों से किया आगाह।
I do believe, separate and apart from any particular election or movement, that we are going to have.
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार हो सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल कहा कि मोदी सरकार के फैसले से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं और पूरा विपक्ष इस कदम के खिलाफ एकजुट है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने को तैयार है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समाज में विभाजन पैदा करने वाले राष्ट्रवाद के खतरे से दुनिया को आगाह किया है। अपने आखिरी विदेशी दौरे के पहले पड़ाव पर ग्रीस पहुंचे ओबामा ने यह भी कहा कि यूरोप का मजबूत और एकजुट रहना पूरी दुनिया और अमरीका के लिए अहम है। उन्होंने अमरीकी हितों के लिए नेटो को भी ज़रूरी बताया है। मोरक्को में जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रही बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि पेरिस में हुए जलवायु समझौते को वापस नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगुवाई में इस समझौते को लेकर जो प्रतिबद्धता दिखाई गई थी, अमरीका को उसका सम्मान करना चाहिए। अमरीका के हाल में चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान इस समझौते पर सवाल उठाए थे। ओलांद ने कहा,
L'accord était historique et ce que nous devons dire ici, c'est que cet accord est irréversible.
ये समझौता ऐतिहासिक था। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इसे वापस नहीं लिया जा सकता। कानूनी तौर पर इसे बदलना मुमकिन नहीं है। ये 4 नवंबर को प्रभाव में आया है। 100 से ज़्यादा देश इसका अनुमोदन कर चुके हैं। इस पर अमल नहीं करना दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। ऐसा करना शांति के लिए खतरा साबित हो सकता है। ये थे फ्रांसवा ओलांद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि अगर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चरमपंथ से संघर्ष के अपने वादे पर अमल करते हैं तो उनके स्वाभाविक सहयोगी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस बात का इंतजार करेंगे कि क्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सीरिया को लेकर अमरीका की नीति में बदलाव ला सकते हैं। चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने ओबामा प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाए थे और सीरिया के विद्रोहियों का समर्थन किया था। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने पॉल रेयान को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचले सदन के स्पीकर के तौर पर एकमत से नामित किया है। रेयान के स्पीकर बने रहने को लेकर जनवरी में सदन में मतदान होगा। निचले सदन में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। रेयान डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उदासीन थे, लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद से उनकी तारीफ करते रहे हैं। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 16 तारीख और दिन बुधवार। कार्यक्रम की शुरुआत संसद सत्र से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष एकजुटता का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया फैसलों को तुगलकी फरमान बता रहा है। सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के तेवर आक्रामक नजर आ रहे हैं। सुनिए एक रिपोर्ट संदीप सोनी की।
दिल्ली में आसमान साफ है, हवा में ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन संसद के भीतर तापमान बढ़ने के पूरे आसार हैं। एक तरफ है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो 1500 के पुराने नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी ओर हैं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल। संसद तैयार है।
टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज दे प्रोपगेटेड, देयरफॉर दे शुड अपोलोइज फॉर दिस।
एब्सोल्युटली,
दैट्स व्हाई वी वांट दिस।
काले धन के मुद्दे पर संसद के भीतर हंगामे की ये आवाजें पिछले सत्र में उठी थीं। इस बार ऐसा ना हो इसलिए परंपरा के मुताबिक संसद सत्र से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार बोले,
शीतकालीन सत्र में हम सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और शीतकालीन सत्र को सार्थक बनाएंगे। जो विपक्ष और बाकी पक्ष जो मुद्दे लाएंगे, सब मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है।
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के ठीक बाद विपक्ष ने अपना इरादा जता दिया कि संसद का शीतकालीन सत्र गर्मा गर्म होने वाला है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद,
कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, जेडीयू, सीपीआई, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, डीएमके, आरएसपी तय किया है कि एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी होगी। चाहे कितना भी सरकार अपोजिशन यूनिटी तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दे भी गिना दिए, पर ये नहीं बताया कि उनके तरकश में कौन से तीर होंगे।
डीमोनेटाइजेशन का इश्यू सबसे पहला, दूसरी चीज जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी के झगड़े में बच्चा गरीब हो गया, तीसरी चीज बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम को हम पार्लियामेंट में ही खोलेंगे।
बहरहाल कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने जो बयान दिए हैं उनसे साफ है कि 1500 के पुराने नोट बंद होने से संसद पर हंगामे के बादल छाए हुए हैं। जदयू नेता शरद यादव,
हम ये मानते हैं कि इस फैसले से इस देश की जनता तंग और तबाह है, एक तरह से ये धंधा पानी बंदी है।
सीपीएम नेता सीताराम येचुरी,
अगर आप इंक लगाओगे, हमसे कहा गया कि 4000 रुपए हम हर हफ्ते निकाल सकते हैं, तो इंक लगाएंगे आप तो हफ्ते में ये इंक गायब हो जाएगी क्या? ये तो तुगलक राज चल रहा है बंदा।
काला धन संसद के बाहर और भीतर बहस का एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर घेरा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल,
आज तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वो नाम नहीं दिए और आपको याद होगा कहते थे कि 80 लाख करोड़ काला धन बाहर पड़ा हुआ है और पहले 100 दिनों में हम सारा काला धन हिंदुस्तान में ले आएंगे। तो क्या वो वादा पूरा किया है उन्होंने? जब 8 तारीख को उन्होंने निर्णय लिया तो बोले 2-3 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अब आकर कहते हैं कि हमें 50 दिन दीजिए, हम क्यों इन पे विश्वास करें?
इन सब आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है। पार्टी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा,
जहां नरेंद्र भाई मोदी इस देश से काले धन और भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, वहीं समूचा विपक्ष नरेंद्र भाई मोदी को हटाना चाहता है।
लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। मोदी सरकार का दावा है कि वो जो कर रही है जनता की भलाई के लिए कर रही है। विपक्ष का दावा है कि नोटबंदी जैसे मुद्दों पर जनता सरकार के साथ नहीं बल्कि विपक्ष के साथ है। अब देखना यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में होने वाले हंगामे को जनता जनार्दन कितना पसंद करती है, क्योंकि संसद की कार्यवाही पर जनता के ही पैसे खर्च होते हैं और जनता जनार्दन फिलहाल बैंक और एटीएम की कतार में खड़ी है। संदीप सोनी, बीबीसी दिल्ली।
1000 रुपए और 500 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बाद इस तरह की खबरें उड़ती रहीं कि सरकार के इस कदम की कुछ लोगों को जानकारी थी जिसका उन्होंने फायदा उठाया। हालांकि सरकार इससे इनकार करती रही है, लेकिन क्या बैंकों के आंकड़े कुछ गवाही देते हैं? क्या बैंक और एटीएम के बाहर लगी कतारों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली और रिजर्व बैंक की भूमिका पर सवाल नहीं उठने चाहिए? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथी संदीप सोनी ने बात की वरिष्ठ अर्थशास्त्री मोहन गुरु स्वामी से।
देखिए, एक चीज है, हिंदू बिजनेस लाइन में अक्टूबर 8 को लेख छपा, इसमें क्या है कि नए नोट आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, इसलिए बैंक डिपॉजिट बढ़ गए। और ये भी आंकड़े साबित करते हैं कि कम से कम 1 लाख करोड़ सितंबर और अक्टूबर में बैंक में जमा हुए। तीसरी चीज, एक अच्छी सबूत जो है, बीजेपी की बंगाल की जो पार्टी है, यूनिट है, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के 2 दिन पहले 4 करोड़ रुपए उन्होंने बैंक में जमा किया नोटों में। और ऐसे वाकयात दूसरे राज्यों से बिहार है जहाँ पार्टी के लोगों ने पैसा इसको बैंक में जमा किया है। अब इसके बारे में आंकड़े तो बैंक ही दे सकते हैं, बैंक सारे सरकारी बैंक है तो ये देंगे नहीं। एक बैंक का खबर निकल गया बंगाल में क्योंकि ट्रेड यूनियन वालों ने बता दिया बाहर, तो ये साबित होता है कि जो लोग इनके पास दो नंबर का पैसा छोटे मात्रा में है उन्होंने कैश कर लिया क्योंकि उनको पता चल गया। जो बड़े मात्रा में रखते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं रखते पैसा।
मोहन जी, आपको लगता है कि ये सारे फैसले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैं या इसमें वित्त मंत्रालय, अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं, और रिजर्व बैंक की भी कुछ भूमिका, कुछ उनकी भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए?
पहले मना कर दिया उसको, बोला कि अच्छी उचित नहीं है ये करना, तो आप रिजर्व बैंक को वक्त नहीं दिए नोट छापने के लिए, ना आप तैयारी करते थे तो 100 रुपए के नोट ज्यादा छापते थे और एक डबल करते थे करेंसी, उसको वो नहीं किया आपने, बिल्कुल तैयार नहीं थे। कह दिया कि फलाना तारीख को होगा, शायद इनको कुछ ज्योतिष ने बोला कि इस दिन को करो, पता नहीं इनका इनके कैबिनेट में कोई डिस्कशन नहीं होता, सब दब के बैठे हुए हैं, ये एक तानाशाह बन के बैठ गए आजकल। आप गलती नहीं कर सकते हैं क्या?
तरह के बयान आए हैं जो कहते हैं कि सातवें वेतनमान आयोग 7th Pay Commission का पैसा बैंकों में जमा किया?
नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 7th Pay Commission का पैसा अभी डिसबर्स भी नहीं हुआ, सरासर झूठ बोलते रहते हैं, उनके झूठ बोलने की आदी है। और जो जो पैसा गया है वो कैश बेनिफिट जनधन अकाउंट से गया है, ज्यादातर जनधन अकाउंट में जिसके पास कोई पैसा नहीं है तो उसके अकाउंट से पैसा जा रहा है अंदर। इसकी एक जांच होनी चाहिए, बड़ी जांच होनी चाहिए।
एक और सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है,
6 लाख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स
जी,
के पर एक आदमी से पैसा वसूल नहीं किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है 20% बैंक की डिपॉजिट की इक्विवेलेंट हो गए, तो बैंक सारे घाटे पे चल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में एक बैंक का भी मुनाफा प्रॉफिट नहीं हुआ, सारे नेशनल बैंक घाटे में चल रहे हैं। पूंजीपति जो इनके साथ हैं उनका किसी से पैसा वसूल नहीं किया। ये अडानी ग्रुप है जिसपे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 200 करोड़ का जुर्माना लगाया, पता चलता है कि प्रधानमंत्री ने उसको माफ कर दिया। तो ये किस तरह की खुले आम भ्रष्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, खुले आम उनको मदद कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है इस कदम का दूरगामी असर क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पर, भारतीय बाजार पर?
इंडियन इकोनॉमी पर तुरंत एक स्लो डाउन आ गया है, एक मायूसी आ गई है उस पर। अब जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया है, जो स्टॉक खड़े हुए हैं, जो फसल नहीं कटा वो सूख जा रहा है क्योंकि लेबर नहीं मिल रहा आपको, जो स्टॉक दुकान में आ गया वो भी खराब हो रहा है, सब्जी और फल तो खराब हो रहे हैं और दूध जो निचोड़ा गया वो भी खराब हो रहा है। अब ये कितने करोड़ हजार करोड़ का नुकसान हुआ अभी इसको इसमें अभी पता चलेगा 10-12 दिन में। और ये पैसा किसान जो है प्रोड्यूसर है वो वसूल करने की कोशिश करेगा और दाम दर बढ़ाएगा वो।
ये थे वरिष्ठ अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी और उनसे बात कर रहे थे हमारे साथ ही संदीप सोनी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्स पर।
तो आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, मैं हूं इकबाल अहमद। इस वक्त हो चुके हैं सुबह के 6:43 और 28 सेकंड और अब चलते हैं अमरीका। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अति राष्ट्रवाद के बढ़ते खतरों से लोगों को आगाह किया है। उन्होंने अंग्रेजी के शब्द क्रूड नेशनलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे आप यूं समझ लें असभ्य या अश्लील या अपरिपक्व राष्ट्रवाद कह सकते हैं। ग्रीस दौरे पर गए ओबामा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम और वे की विभाजनकारी सोच से हर हालत में हमें बचना होगा। राष्ट्रपति के तौर पर वे अपने आखिरी विदेशी दौरे पर हैं इन दिनों। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए वात्सल राय से।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि दुनिया का भविष्य संघर्ष की ओर ले जाने वाली बातों से तय नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अमरीका नस्ल और मजहब के आधार पर समाज के विभाजित होने के दर्दनाक खतरों से वाकिफ है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने आखिरी विदेश दौरे पर ग्रीस पहुंचे ओबामा ने दुनिया को विभाजनकारी राष्ट्रवाद के खतरे से भी आगाह किया।
उन्होंने कहा,
In the United States, we know what happens when we start dividing ourselves along lines of race.
मैं मानता हूं कि किसी खास चुनाव या फिर घटना के सिवाय हमें अतिराष्ट्रवाद या फिर ऐसी जातीय पहचान जो हम और वो के इर्द गिर्द बुनी जाती है से खुद को बचाना होगा। मैं ये कहने के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा कि मानवता का भविष्य और इस दुनिया का भविष्य इस बात से तय होगा कि हम में क्या कुछ समान है, न कि उन बातों से जो हमें अलग करती हैं और हमें संघर्ष की ओर ले जाती हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। ओबामा ने भले ही किसी खास घटना का जिक्र न किया हो, लेकिन उनकी चेतावनी को ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले और अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा ने कहा कि नस्लवाद और कट्टरता जैसी चीजें देश की प्रगति को पीछे की तरफ ले जाती हैं।
I do believe, separate and apart from any particular election or movement, that
अमेरिका में जब हम अपने आप को नस्ल या धर्म के आधार पर बांटते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होगा। ये खतरनाक है, सिर्फ उन अल्पसंख्यक समूहों के लिए नहीं जिनके साथ भेदभाव या हिंसा होती है। जब हम काले लोगों, एशियाई लोगों, गे लोगों और महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता के साथ अमरीकी जीवन को तैयार करने में भूमिका निभाने से रोकते हैं तो हम एक देश के तौर पर अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। ओबामा ने यह भी कहा कि मजबूत और एकजुट यूरोप दुनिया और अमरीका के लिए अच्छा है। अमरीकी हितों के लिए नेटो भी अहम है। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान नेटो की भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे। उधर ग्रीस के यूरोप मामलों के मंत्री जॉर्ज कटरूगलोस ने बीबीसी से कहा कि ट्रंप को लेकर अभी कोई राय रखना जल्दीबाजी होगी।
We must wait and see if the elect president's rhetoric is going to change.
हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बयान बदलते हैं, जबकि उन पर अमेरिका जैसे बड़े देश के भविष्य की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि अभी ऐसा करना जल्दीबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम यूरोप और अमेरिका के बीच सार्थक साझेदारी चाहते हैं तो लोकतंत्र के मूल्यों, मानवाधिकारों और विविधता के मूल्यों के सम्मान पर जोर देना जरूरी है। ये थे जॉर्ज कटरूगलोस के शब्द। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्होंने चुनाव में अलग तरीके से प्रचार किया होता तो वो हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल कर सकते थे। एक राज्य में वोटों की गिनती बाकी रहते हुए हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप के मुकाबले करीब 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर लिए थे, लेकिन इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम में ट्रंप को जीत हासिल हुई। ट्रंप ने रविवार को कहा था कि ये प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है और वो सीधे वोटों की प्रक्रिया पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने मंगलवार को कहा कि वो सीधी वोटिंग में भी जीत हासिल करते। उन्होंने कहा कि वे इलेक्ट्रॉल कॉलेज सिस्टम का सम्मान करते हैं, लेकिन ये देखना ज्यादा पसंद करेंगे कि सीधे वोटों का नतीजा क्या रहता है।
ये थे वात्सल राय, और वात्सल राय मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो फिलहाल अखबारों की समीक्षा करेंगे। तो वात्सल, बताएं क्या कहते हैं आपके अखबार।
जी इकबाल साहब, मैं स्याही की बात से शुरुआत करना चाहूँगा। कल एक फैसला आया, सरकार ने एक आदेश जारी किया कि बैंकों में अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपकी उंगली पर एक स्याही का निशान लगेगा। जिस तरह से चुनाव के वक्त आप वोट डालने जाते हैं तो आपकी उंगली पर निशान बनाया जाता है, जनसत्ता ने उसको लेकर एक बड़ा दिलचस्प कार्टून बनाया है जिसमें एक शख्स मोदी जी की आकृति के व्यक्ति से कह रहा है कि आइडिया सर, उंगली पर निशान तो लग ही रहा है, लगे हाथों लोगों से वोट भी डलवा लेते हैं।
ये तो वाकई बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं मोदी जी इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कतार में हम खड़े हैं और चुनाव में भी कतार में खड़े रहेंगे।
जी तो इससे जुड़ी हुई खबरें ज़्यादातर अखबारों ने हिंदी अंग्रेजी के अपने पहले पन्ने पर उनको जगह दी है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष और सरकार दोनों ने अपनी रणनीति बना ली है, इसको लेकर भी सारे अखबारों में हिंदी अंग्रेजी के खबरें छपी हुई हैं। कल दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इसे भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया सारे अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए।
जी, उन आरोपों को भी जगह दी गई है और सीधे तौर पर कहा गया है कि केजरीवाल टेक्स ग्राफ चार्जेस टू पीएम डोर स्टेप, हिंदू की है हेडलाइन है। तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है और एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ की है जिसमें वो एक 2000 का नोट दिखाते हुए नजर आ रही हैं। इसको लेकर भी कल सोशल मीडिया पर काफी बहस हुई थी। कई तरह के कमेंट आए थे जिसमें कल वो पहुंची थी अपने 4,500 रुपये बदलवाने के लिए। दिलचस्प बयान इन मामलों को लेकर आ रहे हैं। मैं हिंदुस्तान अखबार ने एक बयान को जगह दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के, जिसमें हेडलाइन उन्होंने बनाया है, काले धन ने मंदी के दौर में बचाया था। अखिलेश ने कुछ अर्थशास्त्रियों के हवाले से ये बात कही थी कल और इसको हेडलाइन में जगह दी गई है। इनके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर को वो गिरफ्तार अभी नहीं करेगी। उनके खिलाफ एक हत्या का
आरोप मामला दर्ज हुआ था
जिसमें कुछ एक प्रोफेसर और थे, कुछ और लोग भी हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक दिलचस्प खबर एंकर स्पेस में अपनी जगह दी है जिसमें एक चरमपंथी के आत्मसमर्पण की खबर है भारत प्रशासित कश्मीर में, जिसने अपने पिता के कहने पर आत्मसमर्पण किया।
बहुत शुक्रिया वात्सल आपका अखबारों की समीक्षा के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
मुस्लिम महिलाओं को एक साथ 3 तलाक दिए जाने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इसे कुछ लोगों का मानना है कि औरतों के साथ ये ज़्यादती का मामला है। अदालतों के आंकड़े अपनी अलग कहानी कहते हैं, लेकिन भोपाल की शरिया कोर्ट यानी शरिया अदालत के आंकड़े जो कहते हैं उससे शायद आप हैरान हो सकते हैं। सुनिए भोपाल से शुरय नियाज़ी की रिपोर्ट।
हर जगह बात उठ रही है कि 3 तलाक के चलते कई मुसलमान मर्द अपनी बीवियों को आसानी से तलाक देकर अलग हो जाते हैं, लेकिन बेगमों की हुकूमत के लिए जाने जाने वाले भोपाल शहर में औरतों के मिजाज कुछ अलग नजर आ रहे हैं। 32 साल की महनाज का निकाह तकरीबन 6 साल पहले हुआ था। कुछ साल पहले पढ़ी लिखी महनाज के उनके पति से रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। पति रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते थे, पर महनाज के लिए इसे जारी रखना मुश्किल था। हालांकि महनाज ने खुला की पूरी वजह नहीं बताई, लेकिन उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। महनाज कहती हैं,
हमारे बीच में ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसकी वजह से ये शादी चल पाना मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने काफी सोचा और उसके बाद मुझे यही लगा कि मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं अपना रास्ता खुद चुन लूं। हालांकि मेरे परिवार में ऐसे बहुत से लोग थे जो मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला कर लिया और आखिरकार मैंने पिछले साल अपने आप को पूरी तरह से आजाद कर लिया।
भोपाल शरिया कोर्ट या कज़ियात के आंकड़े बताते हैं कि 2012 के बाद हर साल इस शहर में तकरीबन 350 खुला के मामले हुए हैं। आंकड़े पर यकीन करें तो मुस्लिम लड़कियों की सोच बदली है और कम से कम भोपाल जैसे शहर में वो खुद अपनी जिंदगी के फैसले ले रही हैं। इस्लामिक कानून के मुताबिक मर्द तलाक देकर बीवी से अलग हो सकता है, पर अगर औरत मर्द से अलग होना चाहती है तो शरीयत के मुताबिक उसे खुला कहा जाता है। शहर का अजीम मुफ्ती सैयद मुश्ताक अली नदवी कहते हैं कि जब हमारे पास कोई आता है तो सबसे पहले उनकी कोशिश आपसी सुलह की होती है, और अगर कोई रास्ता ना निकले तो उस सूरत में अलग होना बेहतर है।
निकाह एक इबादत है और निकाह किए जाए तो ज़िंदगी भर निभाने की नीयत से किए जाए, लेकिन तमाम मराहिल तय करने के बाद अगर मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं निभ पा रहा है तो फिर मार के फेंकने के बजाय, जलाने के बजाय, जहर देने के बजाय, वो तरह तरह की कहानियाँ बजाने के बजाय, इसलिए फिर एक तलाक का हल रखा गया है, उसको आखिरी दर्जे का हल है और फिर उसकी भी पूरी तफसील बताई गई है। तो इसलिए इस्लाम के अंदर निकाह और तलाक और खुला ये एक बेहतरीन हल है मसले का, हल का। उसको गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए, गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए।
मगर बहुत से ऐसे मामले भोपाल में हैं जब महिलाओं को एक तरफा तलाक दे दिया गया। 36 साल की सबिया की शादी 2008 में इंसाफ अली से हुई थी। 2010 में वो एक बच्चे की मां बनी और उसी साल उनका शौहर से किसी बात पर झगड़ा हुआ। उनसे रुपयों की मांग की गई और फिर उन्हें उनके घर छोड़ दिया गया। मगर अगस्त 2011 में एक लेटर मिला जिसके जरिए उन्हें पता चला कि उन्हें तहरीरी, जिसका मतलब लिखा हुआ तलाक दे दिया गया है।
जी हाँ, एक तरफा तलाक था और उन्होंने जो तलाक के लिए कोर्ट से फतवा जो लिया था कजिया से, तो उसमें भी उन्होंने ना 3 तलाक का ही फतवा पहुँचाया उन्होंने, जिस तरीके से भी जो वहाँ झूठा कहा हो लोगों ने, मतलब मजाक समझ के रखा है कि ना वो बीवी से कुछ भी ज़रा सी भी बात हुई, कुछ भी ज़रा सा हुआ या नहीं भी हुई, और उन्होंने है ना बस लेकर और 3 लफ्ज़ के दिए, बाकी उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो होने दे, बच्चे हैं तो बच्चे की हो रही है तो होने दे, उनको कोई मतलब नहीं है इसका। अब फिलहाल तो अभी आंगनवाड़ी चला रहे हैं, आंगनवाड़ी से ही हो रहा है पूरा, और हमारा बच्चा है।
मुस्लिम महिलाओं के तलाक के मामले को लेकर लड़ रही भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की राज्य समन्वयक सफिया अख्तर कहती हैं कि तलाक देने के लिए मर्द नए नए तरीके निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि तरीका वही अपनाया जाना चाहिए जो कुरान में बताया गया है। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। राजकोट में समाप्त हुए पहले टेस्ट मैच में भारत ने जैसे तैसे इंग्लैंड के खिलाफ अपनी जान बचाई और मैच को ड्रॉ कराकर राहत की सांस ली। लेकिन अब कल से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को टीम में शामिल किया है। कर्नाटक के केएल राहुल ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ पहली पारी में 76 और दूसरी पारी में 106 रन बनाकर अपनी फिटनेस का सबूत दे दिया। अब वो गौतम गंभीर की जगह ले सकते हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 29 रन बनाए लेकिन दूसरी पारी में वो अपना खाता भी नहीं खोल सके। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि पिच पर घास नहीं होगी और ये दोनों टीमों के लिए मददगार साबित होगी। उधर दक्षिण अफ्रीका ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए होबार्ट में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कल ऑस्ट्रेलिया को चौथे ही दिन एक पारी और 80 रन से करारी मात दी। पहली पारी के आधार पर 241 रनों से पिछड़ने वाली ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी केवल 161 रन पर ढह गई। कल दो विकेट पर 121 रन से आगे खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज काइल एबट और कैगिसो रबाडा की तूफानी गेंदों का सामना नहीं कर सके। एबट ने 77 रन देकर 6 और रबाडा ने 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इनकी गेंदों का खौफ कितना रहा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डेविड वार्नर ने 45, उस्मान ख्वाजा ने 64 और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 31 रन बनाए लेकिन बाकी बल्लेबाज तो दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच सके। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी केवल 85 रनों पर समाप्त हुई थी जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 326 रन बनाए थे। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। उधर इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम को कल 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य था जो उसने सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट के 78 और फ्रेन विल्सन के 30 रन की मदद से 29.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर श्रीलंकाई महिला टीम 49.4 ओवर में 161 रन ही बना सकी थी। वहीं चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज चौथी वरीयता के साथ भारत की साइना नेहवाल थाईलैंड की पॉन्टिप बुराना परासिर्थ सुक्का और रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु चीन ताइपे की चिया ली का सामना करेंगी। जबकि पुरुष एकल वर्ग में आज ही भारत के बी साई प्रणीत HS प्रणय और अजय जयराम भी अपना दावा पेश करेंगे।
और चलते चलते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने को तैयार है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समाज में विभाजन पैदा करने वाले राष्ट्रवाद के खतरे से दुनिया को आगाह किया है। अपनी आखिरी विदेशी दौरे के पहले पड़ाव पर ग्रीस पहुंचे ओबामा ने यह भी कहा कि यूरोप का मजबूत और एकजुट रहना पूरी दुनिया और अमरीका के लिए अहम है। मोरक्को में जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रही बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि पेरिस में हुए जलवायु समझौते को वापस नहीं लिया जा सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि अगर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चरमपंथ से संघर्ष के अपने वादे पर अमल करते हैं तो उनके स्वाभाविक सहयोगी हो सकते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने पॉल रयान को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन के स्पीकर के तौर पर एकमत से नामित किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। آپ سے اگلی ملاقات ہوگی ابھی سے ٹھیک ایک گھنٹے بعد کارکرم وشو بھارتی میں، لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے آپ 24 گھنٹے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر۔ اور اب اقبال احمد کو دیجیے اجازت، نمسکار۔